आई नो, हम लोग पूरे अध्याय का पाठ करेंगे। आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, श्लोक नंबर 34। कृपया श्लोक दोहराइए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यस्य युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। प्रभुपाद के द्वारा, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले कई मंगलवारों से हम लोग इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, अध्याय नंबर 9, गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। और आज इसका अंतिम श्लोक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वैसे इस श्लोक को भगवद गीता का सार कहा जाता है। भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बताई, उसको कोई कर्मकांड करने के प्रेरित करने के लिए नहीं, कोई ध्यान योग के लिए नहीं, कोई हठ योग के लिए नहीं, और किसी कार्य के लिए नहीं, केवल एक कार्य के लिए, उसे भक्ति का ज्ञान देने के लिए। वैसे देखा जाए तो अर्जुन सदैव भगवान के संग में था, उनका नित्य पार्षद है, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें ये ज्ञान देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ज्ञान को पढ़ सकें और इस ज्ञान के द्वारा अपना जीवन सफल कर सकें। तो ये भगवद गीता का सार इस श्लोक में दिया जा रहा है कि भगवद गीता कहने का उद्देश्य है भगवान के भक्त बनना, भगवान की भक्ति करना। और ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। हम लोग अपने हृदय की बात या बहुत कोई महत्वपूर्ण बात जो हमें पता हो, वो केवल ऐसे लोगों को बताते हैं जो हमारे बहुत अंतरंगा हों या बहुत निकट के हों। ऐसे लोगों को हम लोग अपने हृदय की बात बताते हैं, और भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपने हृदय की बात बता रहे हैं। क्यों ये हृदय की बात है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सब लोग भक्ति करें, सब लोग फिर से भगवान के धाम वापस जाएं। इस भौतिक जगत में जो नाना प्रकार के कष्ट हम लोग सह रहे हैं, उससे दूर हों। ये भगवान के हृदय में है। भगवान को कष्ट होता है अपने अंशों को, अपने बच्चों को यहाँ इस स्थिति में देखकर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान अगर हैं तो हम लोगों की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें क्या दया नहीं आती है? क्यों भगवान ने हमें ऐसे कष्ट में छोड़ दिया है? ठीक है, हम लोग अज्ञानी हैं, लेकिन भगवान तो अज्ञानी नहीं है। अगर कोई अज्ञानी गलती कर रहा है तो भगवान उसे क्यों नहीं ज्ञान दे देते हैं? क्यों नहीं उसे सुखी बना देते हैं? भगवान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण हम भगवान से दूर भागते रहते हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान तो तैयार हैं, केवल उनकी ओर घूमना है, कुछ सरल चीजें करनी है। हमें ये दर्शाना है अपने कार्यों से कि हम भगवान की ओर जाने के लिए तैयार हैं। और वो क्या कार्य हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने भक्ति का, भक्तों का गुणगान किया कि भक्तों की क्या स्थिति है, किस तरह भक्ति करने से निचले स्तर के लोग भी, शूद्र जो हैं या जो बहुत ही निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो भी उनका उद्धार हो जाता है। फिर किम पुनः ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का क्या कहना, ब्राह्मणों का तो होना ही है उद्धार। यहाँ ब्राह्मण और शूद्र जब भगवान इस्तेमाल करते हैं तो केवल जन्म के आधार पर वो ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं। ब्राह्मण उन्हें माना जाता है जो वेदों का पाठ करते हैं, वेदों का जो पठन करते हैं, या जो शास्त्र जानते हैं। समाज में चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, तो ब्राह्मणों का काम है वेदों का पाठ करना, और वो वेदों का पाठ करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। केवल कोई धागा डाल लेने से या किसी परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, गुण कर्म विभागशः अपने कर्मों से ब्राह्मण बना जाता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं इसके आज के श्लोक में कि अगर भक्ति करनी है तो क्या करना चाहिए। भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये हमें करना है। ये चार चीजें भगवान बता रहे हैं अपना संबंध भगवान से जोड़ने के लिए। इस समय हम लोगों ने अपना संबंध अज्ञान से जोड़ रखा है। हम कहते हैं हम इस परिवार के हैं, हम इस समाज के हैं, हम इस राष्ट्र के हैं, तो ये संबंध अज्ञान से जुड़ा हुआ है, शारीरिक स्तर पर है। और शरीर क्या है? अज्ञान है। इस शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, जड़ वस्तु है। तो इस शरीर से संबंध हमने जोड़ा हुआ है और इस शरीर से संबंधित सारी चीजों को अपना मानते हैं, इसलिए हमारा संबंध अज्ञान से है। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग का पालन करेंगे तो हमारा संबंध ज्ञान से हो जाएगा। और ज्ञान में आने का केवल यही मार्ग है, एक ही मार्ग है जो हमें अज्ञान से दूर ले जाता है, और वो है भक्ति। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन मना, अपना जो मन है वो आप मुझे दे दो, अर्थात सतत मेरा चिंतन करो। कई बार भक्तों को भी और बाहर भी ये सबसे बड़ी तकलीफ है कि मन को कैसे वश में करें। तो भगवान यहां सबसे पहले उसी का उपाय दे रहे हैं, मन मना। आपको कोई आवश्यकता नहीं है अपने मन को वश में करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने की, या कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने की। आपको केवल एक कार्य करना है, मन मना, अपना मन भगवान को दे दीजिए। फिर आपको चिंता ही नहीं रहेगी मन को वश में करने की। जब आपके पास मन ही नहीं रहेगा तो आप वश में किसे करेंगे? अर्थात सदैव भगवान का चिंतन कीजिए, मन मना। फिर भगवान कहते हैं आप नहीं कर सकते हो सदैव मेरा चिंतन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं चिंतन करने के लिए। भगवान ने कहा मन मना, मेरा चिंतन करो, लेकिन हमारे पास कितने सारे विषय हैं चिंतन करने के लिए। समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी के बाहर क्या हो रहा है, कितने सारे विषय हैं। चांद पर जाना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे पास। भगवान का विषय बाद में आएगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मन मना, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा करो, उस पर चिंतन करो। तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, मन मना। नहीं कर सकते ठीक है, भव मत भक्तो, कम से कम मेरे भक्त तो बनो। तो हम लोग कहते हैं कैसे बने, हमारे पास इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं या फिर और बहुत सारे लोग हैं, उनके भी तो भक्त बनना है, केवल कृष्ण के कैसे बन सकते हैं। हम एक जगह पढ़ रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद से विशेष करके आचार्यों ने ये सिद्ध करना शुरू किया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। लेकिन उनके पहले विशेष करके जो अलग अलग संप्रदाय हैं या जो भी आध्यात्मिक अध्यात्मवादी लोग थे, वो इस तथ्य को स्थापित करना चाहते थे कि कृष्ण भगवान नहीं हैं, कृष्ण एक अवतार हैं। आज भी कई स्थानों में, कई संस्थाओं में कृष्ण को भगवान नहीं, कृष्ण को परमात्मा कहा जाता है, कृष्ण को अवतार कहा जाता है। हमने तो इतना भी सुना है कि आज के समय में भी एक कोई महान सन्यासी हैं, उन्होंने भाष्य लिखा है गीता पर, और अपने गीता भाष्य में वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है कि कृष्ण भगवान हैं, ये सही नहीं है। पाश्चात्य देशों में लोगों को पता नहीं था, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा ज्ञान दिया है, लेकिन दरअसल कृष्ण अवतार हैं, ऐसा उन्होंने भाष्य में लिखा है। लेकिन यहाँ भगवान भक्ति के सरल, भगवान भी तो भगवान और भगवान का मन अलग नहीं है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, एक भाष्यकार ने ऐसा लिखा था कि जब भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, तो वह ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, वो कह रहे हैं मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनके भक्त बनो। तो कृष्ण का मन और कृष्ण का देह अलग नहीं है, एक ही है, सच्चिदानंद विग्रह। उनके मन में कोई अंतर नहीं है, जो वो कह रहे हैं वही उनका मन है। तो इसलिए जब वो कहते हैं मन मना, तो हमें भगवान का चिंतन अर्थात कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, केवल कृष्ण को जानना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, तैनेव कर्मणा ध्यायम माम पराम भक्तिमिच्छति। जब हम अपने कर्मों के द्वारा ध्यायम भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान ही जरूरी है। इस कलयुग में हमें दो प्रक्रियाएं बताई जाती हैं भक्ति की प्रमुख, श्रवण और कीर्तन। लेकिन ये श्रवण और कीर्तन का उद्देश्य क्या है? ध्यान, स्मरण। जब हमारा श्रवण और कीर्तन परिपक्व हो जाता है तब स्मरण आता है। जब हम जप करते हैं तो भी हमसे ये आशा की जाती है कि हम भगवान का स्मरण करें। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोगों से आशा की जाती है कि भगवान का स्मरण करें। इसलिए हम लोगों को भगवान का स्मरण सतत करना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के विषय में नहीं सोचेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या अंत में सोच लेंगे। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा नारद मुनि राजा प्राचीन बहिर्षित को बताते हैं। एक और राजा थे पुरंजन, उनकी कथा वो सुनाते हैं। और उस कथा में उन्होंने पुरंजन का पूरा चरित्र सुनाया। और उस चरित्र में अंत समय में जब पुरंजन अपना देह छोड़ रहे थे, तो उस समय उन्हें स्मरण हो रहा था अपनी पत्नी का। वो बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी से, इसलिए पुरंजन जिस समय देह छोड़ रहे थे तो केवल पत्नी के विषय में सोच रहे थे कि मेरी पत्नी का क्या होगा, उसका कौन ख्याल रखेगा। और इसी कारण से, क्योंकि उनका चिंतन भगवान का ना होकर अपनी पत्नी का था, अगले जन्म में उन्हें एक स्त्री का देह धारण करना पड़ा। ये श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कथा बताते हैं पुरंजन की। हम लोग पिछले कई महीनों पहले इस विषय पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं श्रीमद् भागवतम की क्लासेस में। तो इस तरह से अगर हम लोग ये सोचें कि भगवान को ना ध्यान करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हमें जानना चाहिए कि कितना कष्ट होता है। अगर हम ये एक कार्य नहीं करें तो हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम लोग हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस जगत में कुछ भी नया नहीं है। जैसे कल सब लोग नए साल की खुशी मनाने वाले हैं, नया वर्ष आ रहा है। अगर हम लोग अपने जीवन को देखें तो नया वर्ष कहाँ है? हम लोग एक चक्र में हैं। उस चक्र का जो अगला बिंदु हमें दिखता है वो हमें नया दिखता है। हमारा अगला साल, हमारा जन्मदिन आ गया, हमारे घर में नए बालक ने जन्म लिया, ये नया हरा बिंदु है। उस बिंदु से जब आगे जाते हैं तो नया बिंदु दिखता है। आप लोग बिंदु समझते हैं ना, पॉइंट। ऐसे वो सर्कल है, उसमें हम आगे 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 जाते हैं, स्थिति आती है, फिर से उसी पे आ जाते हैं। यानी हम लोग उस चक्र में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नया आ रहा है, सब कुछ पुराना। क्या है इस चक्र से बाहर जाने की अगर आप इच्छा करते हैं तो वो कुछ नया है। इस चक्र के परे देखने की इच्छा करते हैं तो वो कुछ नया है। और वो संभव है भक्ति के द्वारा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे देखने। इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से हम लोग भगवान की भक्ति करें और किस तरह से हम लोग भगवान की। जितना हमें इस चीज़ का साक्षात्कार होगा, जितना हम भगवान के विषय में जानेंगे, उतनी हमारी भगवान के विषय में खबर होगी। श्रद्धा और साक्षात्कार, ये दोनों ऐसे चलते हैं कि जितना साक्षात्कार बढ़ता है उतनी ही श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विषय में जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब भगवान यहाँ कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। लेकिन इससे पहले हमें कृष्ण को जानना चाहिए। आप किसी के कैसे भक्त बन सकते हैं, आप किसी को कैसे समर्पण कर सकते हैं, जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं। इसलिए कृष्ण को जानना चाहिए, कृष्ण कौन है। कृष्ण बताते हैं, स्वयं अपना परिचय देते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। कृष्ण
शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि किस तरह से इस सारे विश्व में चर और अचर प्राणियों के वो प्राण हैं। बहुत सुंदर श्लोक में वो बताते हैं, अहम हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिं पुमांश्च। वो कहते हैं अहम हि विश्वस्य चराचरस्य, मैं ही इस सारे विश्व का चर और अचर प्राणियों का बीजम बीज है। बीज मतलब स्रोत जिससे सब कुछ आता है। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि मैं अहम बीज प्रदापिता। तो कहते हैं बीजम मैं हूँ, प्रधानम, प्रधान यानी ये सारी सृष्टि की अव्यक्त स्थिति जब होती है शुरुआत की रचना के समय, और प्रकृति, प्रकृति भी मैं ही हूँ। भगवान किसी चीज से अलग नहीं है। हम जो भौतिक प्रकृति देख रहे हैं ये भी भगवान है। हम जो बाकी चीजें देखते हैं इस जगत में या कुछ और कोई भी चीजें देखें ये सब भगवान है। भगवान कहते हैं अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृतिम पुमांश्च, मैं ही हूँ सब कुछ, हर एक चीज का कारण। और वो कहते हैं मया हितम तेज इदम विधस्सी विद्धे विधेय त्वमथो जगन्ति। और हे ब्रह्मा जी, जिस शक्ति आपको मिली है इस सृष्टि की रचना करने की, वो शक्ति भी मुझसे आ रही है। विद्धे, यहाँ ब्रह्मा जी को संबोधित करके कहा जा रहा है कि आपकी जो शक्ति है इस सृष्टि की रचना करने की, वो शक्ति भी मुझसे आ रही है। ये भगवान अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं। गीता में भी हमने उनके परिचय सुने। तो भगवान को पहले जानना चाहिए इस सृष्टि के वो रचयिता हैं, ये सारी सृष्टि के वो मालिक हैं। ऐसे कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, जिनके कई रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण, ये सारे उनके नाम हैं, अलग अलग उनके रूपों का वर्णन है, अनंत हैं वो। तो ऐसे कृष्ण अपने आप को यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे समर्पण करो। तो हमें ये कार्य करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, फिर हम समर्पण कैसे करेंगे। यहाँ तो अर्जुन देख रहे थे, अर्जुन के तो सामने थे भगवान, तो अर्जुन ने समर्पण किया। हम तो नहीं देख रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, भागवतम में उदाहरण आता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर का कोई भी अंग आँखों को अपने आप देख नहीं सकता, क्या हमारा हाथ स्वतः आँखों को देख सकता है? आँखें हैं, हाथ कहेगा कि हाथ को आँखें दिखाई दे रही हैं, पांव कह सकते हैं कि हमें आँखें दिखाई दे रही हैं, हमारे शरीर का कोई भी अंग ये कह सकता है कि मुझे आँखें दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई देती। आँखों के कारण हमें अंग दिखाई देते हैं। आँखें हैं इसलिए हम आगे चल पाते हैं, हमारे पैर आगे चल पाते हैं, हम देखते हैं आगे सब ठीक है, हम पैर रखते हैं। तो आँखों के कारण ये होता है, लेकिन कोई आँखों को कोई भी अंग देख नहीं पाता। इसी तरह हम लोग इस सृष्टि में भले ही भगवान को देख ना पाए, लेकिन ये जान सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के निर्देशन में हो रहा है, परमात्मा के निर्देशन में हो रहा है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। और भगवान निर्देश कैसे देते हैं? हम तो उन्हें देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो कैसे देते हैं? भगवान हमें वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा निर्देश देते हैं। ये भगवद गीता भागवतम, ये भगवान ने हमें दी है। भागवतम में बताया जाता है कि जिस तरह एक बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है ताकि उसको वश में किया जा सके, तो उसी तरह जीव रूपी बैल के नाक में ये वेद रूपी रस्सी डाली जाती है ताकि जीव को वश में किया जा सके। हम देखते हैं कि अगर बैल जिसके नाक में रस्सी पड़ी होती है, और एक कोई बहुत पतला सा व्यक्ति भी उसको वश में कर सकता है, कि अगर बैल इधर उधर जाने लगता है तो जरा सी रस्सी खींची जाती है, उसको कष्ट होता है, वो फिर से लाइन पे आ जाता है। इसी तरह ये वेद हैं, जब तक कोई व्यक्ति वेदों का पालन करता रहता है उसे कष्ट नहीं होता, सीधा चलता रहता है। लेकिन जहाँ इधर उधर जाने की कोशिश करता है तो रस्सी खींच ली जाती है और फिर उसको कष्ट होता है। इसलिए वैदिक सभ्यता जहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है वहाँ लोग बहुत सुखी हैं, कम से कम आज के भौतिक जगत की तरह तो नहीं है। कितना हम लोग भौतिकता में लिप्त हैं, केवल भोग करना चाहते हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं। भगवान यहाँ बुला रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्यासी नाम नमस्ते, कुछ तो करो। भक्त नहीं बन सकते तो कम से कम मेरी अर्चना, मेरी अर्च विग्रह की सेवा करो, अर्चना पद्धति का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते तो माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार तो करो। और क्या कहेंगे भगवान, और कितना सरल बनाएंगे भक्ति को। हम लोग कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, और क्या कर सकते हैं भगवान, केवल मंदिर में आके नमस्कार करो बहुत है। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, मतलब आप लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे हम रोज आते हैं दंडवत करते हैं, आप कैसे कैसे कह सकते हैं। बाकी लोग बाहर के बहुत कम आते हैं, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि केवल अगर कोई आकर यहाँ प्रणाम भी करता है भगवान को तो उसको लाभ मिलता है, उसको स्वीकृति मिलती है केवल प्रणाम करने से। यमराज जब यमदूतों को उपदेश दे रहे थे श्रीमद् भागवतम में, आप सब जानते हैं कि जब अजामिल की आत्मा को ले जा नहीं सके यमदूत, तो तुरंत गए और बहुत क्रोधित थे। वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हुआ, पहली बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि हम जो कार्य के लिए गए और वो पूरा नहीं हुआ। हम तो सोचते थे आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि इस सृष्टि का कोई और भी मालिक है, आपसे भी ऊंचा कोई है। वो चार बड़े बड़े गुंडे जो आए थे वहाँ पर, चार चार हाथ थे उनके, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे, तो वे लोग ज़बरदस्ती हमसे उसकी आत्मा को ले गए, उन्होंने मना कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो उस समय यमदूतों को जब यमराज ये उपदेश देते हैं तो बताते हैं कि आप मुझे परम मान रहे हो, लेकिन मेरे से भी आगे, मेरे से भी परे एक सत्ता है, एक शक्ति है, एक परम नियंता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नियंत्रण करते हैं। और ऐसी सत्ता का मैं भी, ऐसी सत्ता को मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों को भगवान की भक्ति, ऐसा बहुत सुंदर उपदेश यमराज ने यमदूतों को दिया। भक्ति के कई महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने समझाया, 12 महाजनों का नाम दिया। तो इस तरह से हम लोगों को जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण यही परम नियंता हैं, और इनको ही परम नियंता मानते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति कौन कर सकते हैं, भगवान बताते भगवद गीता में, हम लोगों ने पढ़ा है कि चार तरह के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। आप लोगों ने सब पढ़ा है, इसलिए कृपया आप लोग बताइए कौन कौन से तरह के लोग, चार प्रकार के कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। आर्तो यानी पीड़ित, अर्थार्थी धन की इच्छा करने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्या आप लोग एक एक उदाहरण बता सकते हैं ऐसा, कि जो ऐसे व्यक्ति थे और भगवान की शरण में आए और उन्हें भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए, ये चारों के उदाहरण। आर्तो, कोई पीड़ित व्यक्ति भगवान की शरण में आया। गजेंद्र, बहुत पीड़ित था, कितने समय से युद्ध कर रहा था, कई वर्षों से थक गया था युद्ध करते करते, और इतने समय युद्ध करने के बाद उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, क्योंकि मगरमच्छ जल में था और ये जल में युद्ध कर रहे थे। तो बहुत कोशिश कर रहा था उस समय गजेंद्र, किसी तरह मैं अपने आप को बचा लूं, अपने मित्रों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, जिनकी रक्षा उसने की थी उनसे पुकार कर रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। बहुत पीड़ित था वो, उस अवस्था में उसने भगवान की शरण ली और फिर भगवान के दर्शन ही चाहिए। ये आर्थ, अर्थार्थी, अर्थ की जिसको इच्छा थी, ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मेरे पिता को अपने जो राज्य है उस पर बहुत घमंड है, उन्होंने मुझे गोदी से नीचे उतार दिया, तो मैं इनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। अर्थात जिज्ञासु नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, ये जिज्ञासु थे, कुछ जानना चाहते थे, कई प्रश्न उन्होंने पूछे। पहला अध्याय श्रीमद् भागवतम का ऋषि मुनियों के प्रश्नों का है, 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे सीत गोस्वामी से, जिनका उत्तर देने के लिए पूरी भागवतम कही गई थी। तो ऐसे ये जिज्ञासु और ज्ञानी चार कुमार, ये बालक थे छोटे छोटे, ये चारों कुमार जब वहाँ पहुँचे वैकुंठ के द्वार पर, तो जय विजय ने उन्हें रोक दिया। तो ऐसे ये ज्ञानी पुरुष से पहले ये ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में भक्त बने, भगवान की शरण गए और शुद्ध भक्त बने। आगे चलकर बहुत सारा ज्ञान का प्रचार, भक्ति का प्रचार उन्होंने किया। तो ऐसे ये लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो ऐसे आ सकते हैं। तो अगर हमारी भी कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो भी हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि, अगर हम अकामी हैं, सर्वकामी हैं या मोक्ष कामी हैं, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान बताते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्ण र भजन, न मांगते हो कृष्ण तारे देने सचरण। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भगवान कहते हैं अन्य कामी, ऐसा व्यक्ति जो किसी और इच्छा से मेरे पास आता है, अन्य कामी यदि करे कृष्ण र भजन, उसकी इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, धन चाहता है या और कुछ। जैसे शुद्ध भक्त की वैसे कोई इच्छा नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वाचकाम। लेकिन जो एक अभक्त है, या कहना चाहिए जो कामी पुरुष है, जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, तो उसके लिए क्या होता है, धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, सब चाहिए। वो सोचता है कि धन आ गया मेरे पास। ये व्यक्ति हम कभी इसका वर्णन कर रहे हैं, ये समाज में एक साधारण व्यक्ति का वर्णन है। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मेरे पास कुछ धन आ जाए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम। और जब धन आएगा तो क्या होगा, कुछ लोग मेरे साथ होने चाहिए, आगे पीछे चलने चाहिए, तीन चार लोग, जन्म। और फिर जब ऐसा हो गया, मेरी स्थिति हो गई, तब सुंदर एक सुंदर स्त्री मिल जाए, बस यही कट जाएगा सफर। तो ऐसे हो जाए, जीवन का सफर कट जाए और बस। तो ये सोचते हैं लोग, यही उनका सफर है। कहाँ से कहाँ तक, इंग्लिश में कहावत है, फ्रॉम womb टू tomb, यानी womb यानी मदर के गर्भ से लेकर क्या कहते हैं उसको, कब्र तक, बस यही उनका सफर है, जीवन का सफर है। कि पैदा होते हैं और थोड़ा बहुत बड़े होते हैं, खेल कूद के बड़े होते हैं, उसके बाद कुछ धन कमाते हैं, धन हो गया तो फिर सुंदर स्त्री चाहिए, और फिर स्त्री आती है तो विस्तार हो जाता है, और फिर विस्तार हो गया, और इसके बाद विस्तार में इस तरह फंस जाते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता कि कब बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर जब तक ये पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि बस मुझे ये मिल गया, मेरा जीवन सफल। लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप देखिए, जिन व्यक्ति के पास ये है, क्या वो सुखी हैं? क्या उन्हें जीवन में संतुष्टि प्राप्त हो गई है? क्या वो ऐसा सोचते हैं कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। धन भी है, जन भी है, और उनकी बहुत सारी कविताएं भी हो रही हैं, और उनके पास सुंदरी स्त्री भी है, तो भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं। सुख केवल भक्ति प्रदान करती है। इसलिए अन्य कामी, अगर कोई अन्य कामी भी है, हमारी ये सारी इच्छाएं हैं, कई बार जब भक्तों से कहा जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम, भक्त बोलते बहुत कठिन हो नहीं सकता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसा कैसे हो सकता है कि और कोई अभिलाषा ही ना हो, अन्य अभिलाषी का शून्य जीरो हो जाए, ऐसे ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। इसलिए अन्य कामी, अन्य अभिलाषा भी है तो भी, यदि कोरे कृष्ण र भजन, अगर वो कृष्ण का भजन करता है, तो क्या करते हैं कृष्ण, क्या कहते हैं कि जब वो मेरे पास आता है तो ठीक है, उसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, ये कामनाएं विष के समान है। अर्थात वो मेरे पास आया है और मुझसे कह रहा है मुझे थोड़ा सा विष दे दो, मैं खा लेता हूँ ताकि मेरी आराम से मृत्यु हो जाए। समझिए कोई बालक एक पिता के पास ऐसे जाए और कहे मुझे बहुत कष्ट है, आप ऐसा करो थोड़ा सा मुझे जहर दे दो, मैं अभी खा लेता हूँ आपके सामने और मैं मर जाता हूँ, तो क्या पिता देगा? तो भगवान कहते हैं ऐसे ही है, वो मुझसे विषय की कामना कर रहा है, ये विष के समान है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ, इसलिए जब ये मेरे पास आता है तो मैं इसकी इच्छाओं को सिद्ध कर देता हूँ। और अगर हम लोग अभी भक्ति करना चाहते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भक्त बनो, इसलिए कुछ योग्यता भी तो चाहिए भक्ति करने के लिए, कि क्या कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है? आप लोग बताएं, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है या योग्यता चाहिए? कोई भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कोई योग्यता नहीं चाहिए? कितने सारे लोग हैं भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी कर सकता है, कोई योग्यता नहीं चाहिए। बलगाम में हम लोग हर मंगलवार को यहाँ कार्यक्रम करते हैं, तो बलगाम की पॉपुलेशन 10-12 लाख होगी, कितने तो 50,000 लोग तो आने चाहिए यहाँ पर, कितने हैं 50,000? शायद हमारे यहाँ से ठीक नहीं है, अज्ञानी है, तो मतलब योग्यता ये है कि ज्ञान होना चाहिए, तो पता चलेगा कि भगवान कौन है, भक्ति करनी चाहिए। ये ज्ञान कैसे मिलेगा? भगवान अपने आप दे देंगे, भगवान अपने आप दे देंगे हर एक को कि भाई चलो जाओ जल्दी जल्दी जाओ, इस्कॉन का मंदिर खुला है वहाँ पर, और सब लोग हर मंगलवार को जाओ वहाँ, हर शनिवार को जाओ, रविवार को जाओ। भगवान की इच्छा से तो आते, और हमने प्रवचन के पहले ही बताया था कि भगवान की इच्छा ये है कि सब लोग उनके भक्त बने, फिर भगवान की इच्छा से सब भक्त क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है? ये सही है कि अज्ञान में हैं जिस कारण वो भगवान के पास नहीं आते हैं, तो अज्ञान कैसे दूर होगा, भगवान की शरण कैसे आएंगे? कुछ तो योग्यता चाहिए ना उनके पास, पूर्व जन्मों की सुकृति होनी चाहिए, कुछ उन्होंने ऐसा भक्तों के लिए कार्य किया होगा जिससे उनकी सुकृति अर्जित होती है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो जो भी भक्त भगवान की शरण में आते हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं जिसके द्वारा वो भगवान की शरण ले पाते हैं, तो एक ही योग्यता चाहिए। लेकिन दूसरी ओर आचार्य ये भी समझाते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। एक तो ये जो कार्य है, अपनी सुकृति अर्जित कीजिए, वैदिक भक्ति कीजिए और अंत में प्रेम के स्तर तक पहुँचिए, ये एक मार्ग है। लेकिन और एक मार्ग है, वो भगवान की अहेतु की कृपा, अर्थात ये इस तरह है कि जैसे आप स्कूल में हैं और स्कूल में जब बच्चा एग्ज़ाम देता है तो पहले ऐसे होता था कि 100 में से 35 नंबर आए तो पास हो जाते थे, अभी कितना है पता नहीं है, कितना 40, अभी 40 हो गया, कलयुग बढ़ रहा है ना, तो 40 नंबर आए तो पास होगा। लेकिन उसमें जो टीचर होते हैं उनको एक फैसिलिटी होती है, उनके पास ये अधिकार होता है कि अगर 2-3 मार्क्स कम हैं तो वो आगे उतने मार्क्स देकर उसको पास कर सकते हैं। जैसे 40 मार्क्स में से 2 मार्क्स कम है, 38 आए हैं, तो वो 40 कर सकते हैं, इसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या कहते, तो वो दे सकते हैं। तो इसी तरह जब हम भक्ति में अपना प्रयास करते हैं तो अगर कुछ कम पड़ जाता है तो भगवान दे सकते हैं, भगवान 2-3 मार्क या पूरे भी दे सकते हैं। तो कभी कभी भगवान किसी को पूरे ही मार्क्स दे देते हैं, 100 मार्क्स, कुछ नहीं किया, 0 है, फिर भी 100 मार्क्स दे देते हैं, और कभी कभी बेचारा 70-80 पे पहुंच गया है लेकिन उसको नहीं देते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान की इच्छा है, अपनी कृपा जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे, कोई बाध्य थोड़ी करेगा भगवान को कृपा देने के लिए कि आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है भगवान की। लेकिन हम लोगों को कृपा पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे हमें, हमें तो डिस्टिंक्शन लानी है, हमें तो फुल मार्क्स लेने चाहिए, ग्रेस मार्क्स के लिए वेट नहीं करना चाहिए। और वो सबके ऊपर नहीं होता है, भगवान सबके ऊपर कृपा नहीं बरसाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए एक ही मार्ग है भक्ति, और किसी मार्ग से हम भगवान को नहीं पा सकते। लेकिन इसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, केवल हृदय में इच्छा होनी चाहिए बस। अगर हृदय में इच्छा है तो भगवान आपको मिलेंगे। अभी हम लोग गजेंद्र की बात कर रहे थे,
गजेंद्र को कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान था, कौन सा बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष था वो, कौन से उसने शास्त्र पढ़े थे। हाथी था एक, मनुष्य भी नहीं था, लेकिन केवल उसने इच्छा की भगवान को पाने की, तीव्र इच्छा, उसे भगवान मिले। ध्रुव महाराज का वर्णन हम लोगों ने किया, क्या उम्र थी उनकी, 5 वर्ष का बालक। यहाँ पर कोई 5 वर्ष का बालक होगा तो पीछे खेलता रहेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा प्रवचन में क्या हो रहा है, कृष्ण कौन है, राम कौन है। कभी कभी एकादशी के दिन बच्चे आकर यहाँ पर गाते हैं भजन वगैरह, लेकिन इतनी चेतना उनकी नहीं रहती है कि वो जान पाए कृष्ण कौन है, ज्ञान ले सकें, छोटी सी उम्र के होते। ध्रुव महाराज भी 5 वर्ष के थे, कौन सा बहुत बड़ा उनकी उम्र थी, तो भी उन्हें भगवान प्राप्त हुए। योग्यता मृगारी, उसकी क्या योग्यता थी, कोई योग्यता नहीं थी मृगारी की। एक शिकारी था, शिकार करता था, वो भी ऐसा घिनौने तरीके से शिकार कि आधा मारकर छोड़ देता था, उसकी क्या योग्यता थी, फिर भी उसको भगवान प्राप्त हुए। विदुर का वर्णन आता है, विदुर ने कौन से बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया था, एक दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान मिले। तो इसलिए ये योग्यताएं, बड़ा घर होना, बड़ा परिवार होना, बहुत सारा धन होना या बहुत उम्र ज़्यादा होना, ये सब भगवान की भक्ति पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ समझा रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो। कई बार ये लग सकता है कि ये कुछ घमंड से कह रहे हैं भगवान, केवल मेरी करो और किसी की नहीं करो, लेकिन आप देखिए कि भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ है क्या। सारे देवी देवता भगवान से आते हैं, सारी प्रकृति भगवान से आती है, जीवात्माएं भगवान से आती हैं, सारे अवतार भगवान से आते हैं। तो अगर भगवान कहते हैं कि उनकी भक्ति करो तो उसमें क्या गलत है। इसलिए हम सबको ये भक्ति को बहुत गंभीर रूप से लेना चाहिए। हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कोई कुछ कह देता है तो हम लोग कह देते हैं बस अब भक्ति नहीं करनी, बहुत हो गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कई बार भक्त हमसे ऐसा कहते हैं, कई बार किसी भक्त को हम कुछ समय तक नहीं देखते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आप आए नहीं बहुत दिन से मंदिर, कहते हैं हाँ मैंने अभी निर्णय ले लिया था कि मैं मंदिर नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे, वो ऐसा ऐसा मुझे बताया गया यहाँ पर मंदिर में। तो कुलशेखर जो राजा कुलशेखर है, कालवारों में से एक हैं, वो इस बात का उत्तर देते हैं अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में। वो कहते हैं कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब मैंने कृष्ण का स्मरण ना किया हो, हर क्षण मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ। इसलिए जो मेरे रिश्तेदार हैं या जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं या मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समाज में या अलग अलग लोग हैं वो मेरे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जिस अमृत का स्वाद मिल रहा है वो सर्वोच्च है। हम लोगों को भक्ति में कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने हमारे विषय में कुछ बात कह दी तो हमारा मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन हमारे पास है, हम मन को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। मन को रखिए ही मत अपने पास, चिंता ही नहीं रहेगी। कभी कभी लोगों के पास धन रहता, बहुत धन, घरों में लॉकर लगा कर रखते, लॉकर में बंद करके, और लॉकर भी अजीब अजीब जगहों पर छुपा कर रखते हैं, तो लॉकर में रखते हैं, बहुत ख्याल, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगर किसी के घर में लाखों रुपया है तो वो सोचता है अरे कहीं आ ना जाए, चोर ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले ना, तो सोचते हैं। भागवतम बताता है, हम नहीं कह रहे हैं, भागवतम में बताया गया है कि जो राजा होगा वो कर के रूप में सारा धन ले जाएगा कलयुग में, नहीं तो चोर ले जाएंगे। इसलिए आप लोग जब बाहर जाएं, अभी रथ यात्रा आ रही है, आप लोग कलेक्शन वगैरह के लिए जाएंगे तो उनको ये बताइएगा कि अरे आप भगवान को नहीं दोगे तो आपको चोर ले जाएंगे, क्या फ़ायदा है फिर, नहीं तो सरकार ले जाएगी, इससे अच्छा भगवान को दे दो। ऐसा कहेंगे आप लोग नहीं? हमारी तो ऐसी इच्छा है कि कोई अगर मिला तो हम ऐसा कह देंगे। प्रभुपाद कहते थे वैसे, लेकिन हमें संभालना चाहिए, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। प्रभुपाद तो लोगों को ऐसे ही कहते थे। एक बार एक व्यक्ति आए थे, प्रभुपाद मायापुर मंदिर में ऊपर टहल रहे थे, किसी ने उनको मिलवाया, प्रभुपाद ये ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है, इनका कांच बनाने का बिजनेस है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम तो चोर हो बहुत बड़े। तो एकदम हैरान हो गया। तो उन्होंने कहा और क्या, रेत कहाँ से लेते हो, कांच कहाँ कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे रेत लेता हूँ। तो रेत कहाँ से लेते हो? रेत तो है ना, यहाँ पर है, रहें का भगवान की है, चोरी करते हो भगवान की, चोर हो। तो उसने धीरे से कहा प्रभुपाद मैं थोड़ा डोनेशन भी देता हूँ मंदिर को। कहते ठीक है, तुम छोटे चोर हो, बहुत बड़े नहीं चोर तो हो, प्रभुपाद ने कहा। तो प्रभुपाद ऐसे कहा करते थे हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग जाके कहेंगे अरे आपका धन चोर ले जाएगा और इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, तो बोलेंगे अरे हमें आप श्राप दे रहे हो आके यहाँ पर। तो इस तरह से लोग धन से भी आसक्त रहते हैं, तो कभी कभी उसको बहुत छुपा कर रखते हैं और चिंतित रहते हैं उसके विषय में। बैंक में भी आजकल तो तकलीफ है, पहले तो ऐसा था कि बैंक में रख दिया तो चिंता नहीं, आजकल बैंक भी डूब जाते हैं। तो लोगों को हमेशा अपने धन की चिंता रहती है, शेयर में लगाया तो शेयर डूब ना जाए या जो भी बहुत है। क्यों रहती है? क्योंकि अपने पास रखना चाहते हैं। समझिए वो धन जाकर दे दिया किसी को, अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता नहीं, तो आराम से रह सकते हैं। तो इसी तरह हमारा मन हम अपने पास रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं, उसको कहीं बाहर नहीं जाने देना। विचलित हो रहा है नहीं, उसको वश में करेंगे कुछ नहीं होगा, भक्ति करेंगे, वो होता नहीं है। मन को भगवान को दे दीजिए, उनको बोलिए ये रही आपकी प्रॉपर्टी, आप संभालिए, उसको कहाँ रखना है, क्या करना है, कहाँ लगाना है, वो आपकी चिंता है। आपकी चीज़ मेरे पास थी, मैंने आपको दे दी है, अब आप जानो। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे प्रार्थना करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने अपने प्रयासों से अपने मन को वश में करने की बहुत कोशिश कर ली, बहुत समय से मैंने प्रयास किए लेकिन मन वश में नहीं हो रहा, इसलिए ये मन मैं आपको समर्पण करता हूँ, अब आप जानो कैसे इसको संभालना है। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसा हो जाए तो आप सब अपना मन भगवान को दे दीजिए। ये है मन मना, सवय मनः कृष्ण पदारविन्दो। सब जो अपना मन है सबसे पहले कृष्ण के पदारविंद में लगाइए। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और ये वाचा को वैकुंठ यानी आध्यात्मिक विषयों के वर्णन में लगाइए। ये भक्ति के मार्ग हैं। कई बार हम लोग जब भक्ति करते हैं, हम लोग ये विषय जानने की कोशिश करते हैं कि हम भक्ति में सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग इतने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति रुचि नहीं आ रही, प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, तो क्या करना चाहिए? तो कारण इसका यही है कि हम लोगों ने पूर्ण रूप से भगवान को एक तो समर्पण नहीं किया है, अपने मन को भगवान में नहीं लगाया है, अपनी वाचा को भगवान के गुणानुवर्णन में नहीं लगाया है, तो कैसे भक्ति होगी? हम लोग मंदिर में भी आते हैं तो इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, प्रभु जी इसमें भी और माता जी इसमें भी, एक दूसरे के घर की बात ज़्यादा होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। क्यों इन विषयों पर चर्चा करना है? जब भी दो भक्त मिले उन्हें कृष्ण कथा करनी चाहिए। हम लोग पिछली एकादशी आलवारों के विषय में सुन रहे थे, जब तीनों मिले थे तो क्या कर रहे थे? कृष्ण कथा। और करने से क्या लाभ हुआ? बीच में घुस गए थे भगवान ना? तो अगर हम भी करेंगे तो भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है केवल आलवारों के लिए आए थे, हमारे लिए नहीं आएंगे। आलवार कौन थे? वो भी जीवात्माएं हैं, केवल शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने अपने जीवन में ये जान लिया है कि भक्ति करना ही सर्वोच्च कार्य है, भगवान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोग भी ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब मिलें तो हमें कृष्ण कथा करनी चाहिए, वो हम लोग करते नहीं। जब देखें तो भगवान को देखना चाहिए, दर्शन भगवान के होने चाहिए, हमारे लिए दर्शन कुछ और ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा मन भक्ति मार्ग से अलग हो जाता, दूर चला जाता, जिस कारण से भक्ति में तीव्रता नहीं आती, गंभीरता नहीं आती। और कुछ समय बाद हम लोग ये सोचने लगते हैं कि इतने समय से जप किया क्या लाभ हुआ, क्योंकि हम लोग एक तो कोई भौतिक लाभ की कामना करते हैं, जप के द्वारा कुछ भौतिक लाभ पाना चाहते हैं कि मैं इतने समय से जप कर रहा हूँ, कम से कम मेरे घर में तो शांति होनी चाहिए थी, घर में भी शांति नहीं है, या जप कर रहा हूँ और व्यापार में इतनी तकलीफ है, दूसरे लोग सब धोखाधड़ी कर रहे हैं और मुझे भी धोखाधड़ी करनी पड़ रही है, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए धोखाधड़ी। तो व्यापार के विषय में बताया जाता है कि जब हम लोग घर पे हैं तो हमें एक बकरी के समान होना चाहिए, एट होम यू शुड बी लाइक अ लैम, लेकिन एट वर्क यू शुड बी लाइक अ लायन। जब हम काम कर रहे हैं तो एक शेर की तरह होना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि धोखाधड़ी करनी चाहिए, क्योंकि अगर भले हो सकता है धोखा करके हम लोग कुछ धन कमा सकते हैं और समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो सकती है कि सारे ही, अभी ऐसा है, ये कैसे है कि चीटर्स के समाज में हमारी बहुत मान सम्मान है। अगर आपको ऐसा कोई कहे कि धोखेबाजों के समाज में आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ समाज का, अच्छा लगेगा? धोखेबाजों का समाज है उसमें क्या प्रतिष्ठा लेकर करना है? तो इसी तरह अगर सारे लोग व्यापारी सब चोर हैं तो हम भी क्यों चोर बन जाएं? हम भी क्यों उस मान प्रतिष्ठा के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करें? भले ही समाज में सब कर रहे हैं, हम भी अगर करेंगे तो भगवान तो देख रहे हैं, हमारे साक्षी हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, समझिए नहीं करने का मतलब होता है, अगर आप व्यापार में कुछ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, मतलब नदी के प्रवाह की दूसरी तरफ जा रहे हैं, उल्टे प्रवाह में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है बिजनेस करना है तो धोखा देना ही पड़ेगा, बिना धोखे के बिजनेस नहीं होता है। सही बात है ना? अभी कोई व्यापारी है, वो बम्बई से 100 रुपये में कोई सामान लेकर आए और यहाँ पर आकर लोगों से कहे, देखो मैं बम्बई से लाया हूँ, सामान 100 रुपये का है, आपको 200 में दूंगा, कृपया आप खरीद लीजिए, कोई खरीदेगा क्या? वो व्यक्ति क्या कहेगा? अरे मुझे 190 रुपये में पड़ा है, केवल 10 रुपये ले रहा हूँ आपसे, तो 200 रुपये में दे दीजिए, है ना? तो लोग कहेंगे ठीक है, पता नहीं उसमें भी कम कराएंगे शायद, वो हो जाएगा। तो धोखा देना पड़ता है उसको व्यापार में, लेकिन ये सब देखा जाता है। तो पेट पालने के लिए जितना जरूरी है उतना व्यापार करना चाहिए। अगर उसको बढ़ाकर हम बहुत बड़े मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं कि हमारा बंगला हो जाए बहुत जल्दी, हमारी गाड़ी हो जाए, हमारे मोबाइल फ़ोन हो जाए, और पता नहीं और क्या क्या आजकल और कुछ आया है क्या नया? मोबाइल के आगे कुछ नहीं आया ना अभी तक। तो इस इच्छा से अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर ये पाप है और इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे कार्य करने चाहिए हम लोगों को जिससे भक्ति में प्रगति हो, केवल भक्ति, और भगवान देखेंगे। क्यों चिंता करते हैं? लोग कहेंगे हमारा व्यापार में नुकसान हो जाएगा अगर हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो भगवान पर विश्वास कैसा है आपका? अगर भगवान पर विश्वास है तो फिर कीजिए भगवान पर पूर्ण विश्वास, भगवान ध्यान देंगे। चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत शुद्ध भक्त थे और उनका ऐसा था कि वो ताली बजाने तक अगर उनके सामने प्रसाद आया तो लेते थे, भगवान अरेंज करें तो लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो उतनी देर में भगवान करने चाहिए अरेंजमेंट। कई ऐसे भक्त, माधवेंद्र पुरी जिनका कथा हम लोग सुन चुके हैं, तो वो भी कभी किसी के पास मांगने नहीं जाते थे कि मुझे भूख लगी है भोजन दीजिए, कभी नहीं गए। उनका नियम था, कोई देता था तो लेते थे, और कोई मतलब कौन देगा उनको, भगवान देंगे, भले स्वयं आकर देते थे या किसी के द्वारा दिलवाते थे, और जब कोई नहीं होता था तो स्वयं आकर देते थे। ये देखिए भक्तों की कैसे भगवान सेवा करते हैं, केवल विश्वास, श्रद्धा, और उस विश्वास के साथ अगर हम लोग अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाएं और भगवान की भक्ति में लगाएं तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। जितनी हमारी श्रद्धा है या जितना हम भगवान की ओर गए हैं, भगवान भी उतना ही हमारी ओर आए हैं। अगर हम रुक गए हैं, हम मुड़ गए हैं, तो भगवान कहाँ से दिखेंगे? इसलिए हमें भगवान की ओर जाते रहना चाहिए। जो भी भक्ति के विरुद्ध कार्य हैं उनको बंद करना चाहिए। मंदिर में आकर प्रजल्प करना ये बंद करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में प्रजल्प कर सकते हैं, या आपने कहा है मंदिर में आकर प्रजल्प नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी। हमें दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए, घर में कुछ और हैं और यहाँ पर आकर कुछ और हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर तो हम बहुत बड़े भक्त हैं, हरे कृष्णा सब करते हैं, सब है, लेकिन घर में जाकर तो अलग बात है। नहीं, एक ही जीवन है हमारा, एक ही आत्मा तो है अंदर, बहुत सारी आत्माएं हैं अंदर, एक ही तो है, हमारी एक ही आत्मा है। तो उस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहला ये जो मुखौटा हम लोगों ने लगाया है दिखावट का, उसको दूर करना चाहिए, और वो होता है केवल भक्ति से। और भक्ति की शुरुआत यहाँ बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु माम वैश्यस्य प्रेम आत्मान मत परायण। नमस्कार से शुरुआत कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के अक्षय विग्रह की जब आरती होती है तो उसमें भाग लीजिए, और उसके बाद फिर भगवान की भक्ति के मार्ग जो बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा उनका पालन कीजिए, तब हम लोग सतत भगवान का चिंतन कर पाएंगे और इस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां पर मन मना भव मत भक्तो। और इसका एक और मतलब भी है मन मना भव मत भक्तो का, कि अपनी स्वतंत्रता भगवान को दे देना। सब कुछ भगवान के लिए करने का अर्थ क्या है, हम स्वतंत्र नहीं हैं, सब कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस जगत में स्वतंत्रता का अर्थ होता है कुछ अपने लिए करना, जैसे भारत में कहा जाता है भारत स्वतंत्र हो गया है, अब वो जो चाहे कर सकता है, वैसे कर नहीं सकता है लेकिन ऐसे लोग मानते हैं कि अब हम जो चाहे कर लें, स्वतंत्र हो गए, हमारा राज्य है, स्वराज्य है। लेकिन कहाँ स्वतंत्र है व्यक्ति, वैसे भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। तो इस स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को जब हम भगवान के चरण कमलों में लगा देते हैं, अर्थात ये मान लेते हैं कि हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो भगवान चाहेंगे जो भगवान कहेंगे वो मैं करूंगा, जब इस तरह का भाव हमारे अंदर आता है तब हम सही में भगवान को समर्पण कर पाते हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जीव की, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता का उपयोग करना नहीं आता है इस बद्ध अवस्था में, इसलिए अगर उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो उसके लिए घातक होती है। जैसे एक छोटा सा बालक है, आप उसको स्वतंत्रता दे दीजिए, आपको जो करना है करिए, तो खेलते खेलते सड़क पर चला जाएगा, गाड़ी आएगी उसको उड़ा देगी। लेकिन अगर आप उसको कहते नहीं आप इधर से बाहर नहीं जाइए, तो हो सकता है उस बालक को थोड़ा सा खराब लगे लेकिन उसके लिए अच्छा है। इसी तरह हम जब एक गुरु को समर्पण करते हैं, एक नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ये बता रहे हैं अपने गुरु को या भगवान को कि अब मैं आपके आदेशानुसार चलने के लिए तैयार हूँ। और उस समय जब उनके आदेशानुसार चलते हैं तो हमारी स्थिति उस बालक के समान होती है जिसे माता पिता ने अपने संरक्षण में रखा है, अन्यथा हम लोग उस बालक के समान होते हैं जिसको संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। हमें ऐसे बालक नहीं बनना है, हमें ऐसे बालक बनना है जो माता पिता के संरक्षण में रह रहे हैं, कृष्ण के संरक्षण में रह रहे हैं। इसलिए हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए, मन मना भव मत भक्तो। और ये सार है भगवद गीता का नवे अध्याय में, ऐसा ही श्लोक भगवान आगे जाकर भी कहने वाले हैं। तो भगवद गीता में ही दो बार कहते हैं, मतलब कितना महत्वपूर्ण है, एक ही ये 700 श्लोकों में भगवान ने दो बार कह दिया इसको। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण श्लोक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, भगवद गीता जीनी चाहिए। हम लोग ने सुना है कि जब एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए थे कि श्रील प्रभुपाद में 2 घंटे के अंदर पूरी भगवद गीता बता सकता हूँ आपको, श्रील प्रभुपाद को प्रभावित नहीं हुए थे, उन्होंने उनसे कहा क्या आप 2 घंटा भगवद गीता जी सकते हैं, अगर जी सकते हैं तो आपके जीवन का लाभ है, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। अभी सोमवार को श्रील प्रभुपाद प्रवचन में बता रहे थे कि कई बार जो वैज्ञानिक हैं वो बड़े बड़े जीवन को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की दवाइयाँ बनाना या कुछ और चीज़ें करना जिससे हमारा जीवन लंबा हो जाए। प्रभुपाद कहते लंबे जीवन का क्या लाभ है, लंबा जीवन तो एक पेड़ का भी होता है, कई सालों तक कई वर्षों तक खड़ा रहता है एक जगह, कोई लाभ नहीं है। जीवन केवल 2 वर्ष का हो काफ़ी है अगर भक्ति का जीवन है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कितना अच्छा अवसर हमें भक्ति का मिला है, भले ही कुछ समय का हो, भले ही हमने अपने जीवन के 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल व्यर्थ कर दिए हैं, लेकिन अब जो अवसर मिल रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अब भगवान को समझना चाहिए। वैसे भगवान को समझना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं कि स्त्रीलोकों में तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा जो माधुर्य है, मेरी जो लीलाएं हैं, ये बहुत हैं, अनंत हैं, लेकिन फिर भी
भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो मुझे जान सकता है। इसलिए हम लोगों को भगवान को जानने के लिए भक्ति करनी चाहिए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी लीलाएं करते हैं हमें ज्ञान देने के लिए करते हैं। कोई अपने आनंद के लिए तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें आनंद देते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानसं देहमास्तिकं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। तो इन लीलाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं की, केवल हमें ज्ञान देने के लिए, केवल हमें समझाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने 24 वर्ष की छोटी सी आयु में संन्यास ले लिया। किस लिए? केवल ये समझाने के लिए कि नासक्त होना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो उस समय सारे भक्त उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए। जब भक्तों को पता चला कि श्रीवास पंडित के घर में एक सभा हुई और वहाँ पर सारे उनके भक्त आए, मुकुंद, मुरारी, गुप्ता, श्रीवास पंडित, और सब, जैसे ही उन्हें पता चला कि अब विश्वम्भर संन्यास लेने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, तो बहुत कष्ट हुआ उन्हें। प्रार्थना करने लगे भगवान से कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा, आप हमारे प्राण हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं संन्यास लेकर जगह जगह जाऊँ, भगवान के लीला स्थलियों में जाऊँ और वहाँ से कृष्ण प्रेम लेकर आऊँ जो आपको प्रदान कर सकें। तो उनके भक्त कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप चले गए तो हम तो अपने प्राण ही त्याग देंगे, और जब हम लोग रहेंगे ही नहीं तो आप किसको कृष्ण प्रेम देंगे, किसके लिए आप कृष्ण प्रेम लाएंगे। इतनी आसक्ति चैतन्य महाप्रभु से थी, और इतनी आसक्ति होते हुए भी इतने सारे जब लोग कह रहे थे, सची माता उनसे प्रार्थना कर रही थी, जैसे ही सची माता को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, तुरंत वो मूर्छित हो गई। जैसे ही होश में आई भागी वो सड़कों पर, मायापुर नदिया में वो सड़कों पर भागती, जो मिलता उनसे पूछती, क्या ये सही है कि विश्वम्भर संन्यास लेने वाला है। ऐसे करते करते वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी कि आपके पिता भी नहीं हैं, आपका कोई पुत्र भी नहीं है, मेरा एक ही सहारा है, केवल आपके ऊपर मैं आधारित हूं, कृपया करके आप ऐसा कार्य मत कीजिए, आप गृहस्थ जीवन में रहिए, संन्यास स्वीकार मत कीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को ध्रुव महाराज की कथा सुनाई थी, और आगे भी विष्णुप्रिया देवी से भी उनका संवाद हुआ, वो भी नहीं चाहती थी कि चैतन्य महाप्रभु जाएं, लेकिन इतने सब प्रेम दिखाने पर भी चैतन्य महाप्रभु विचलित नहीं हुए, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, केवल लोगों को भक्ति मार्ग सिखाने के लिए, और कोई उनका आशय नहीं था, केवल भक्ति, युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन, इसको फैलाने के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। अनासक्त थे। भगवान राम भी जब सीता देवी वापस आईं, जब युद्ध समाप्त हो गया, तो उस समय जब सीता देवी आईं तो उस समय भी भगवान राम ने अनासक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान राम सीता देवी से कहने लगे कि आप इतने समय तक रावण के घर में रही हैं, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। सीता देवी उस समय गहनों से सजकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पहली बार अशोक वाटिका से बाहर आई थी, पालकी में बिठाकर उनको लाया गया था, और उस समय भगवान राम ने, सारे जो वानर थे वो सीता देवी को दर्शन करना चाहते थे, सीता देवी को देखना चाहते थे, तो सब आगे आगे आ रहे थे और पालकी वालों को चलने में कठिनाई हो रही थी। तो उस समय भगवान राम ने कहा कि सीता देवी को कि आप पालकी से उतर कर आइए। वैसे एक सती स्त्री के लिए ये सही नहीं है कि उसको दूसरे लोग उसको देखें, लेकिन भगवान राम ने कहा कि कुछ स्थानों पर सती स्त्री को देखा जा सकता है, जैसे युद्ध स्थल पर, या विवाह के समय, या यज्ञ के समय, ऐसे देखा जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं। तो फिर जब सीता देवी आईं, सब लोग ये सोच रहे थे कि अब भगवान उनको बहुत मीठी मीठी उनसे बातें करेंगे, कितने समय बाद मिल रहे हैं, उनके लिए इतना भगवान विचलित थे, हा सीता कहकर वो जंगलों में भटक रहे थे और अब इतने समय बाद सीता देवी उनसे मिली हैं, तो स्वाभाविक है कि भगवान का प्रेम उनके प्रति उमड़ कर आएगा। लेकिन भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैंने आपके लिए युद्ध नहीं किया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये युद्ध मैंने आपको पाने के लिए किया है तो ये गलत है। ये युद्ध मैंने इक्ष्वाकु वंश रघुकुल की मान प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए किया है। मेरा उद्देश्य आपको पाना नहीं था। और जो स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के संग में इतने समय तक रही हो, कोई भी सभ्य पुरुष उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं करता हूं, आपकी जहां इच्छा हो आप जा सकती हैं। आप सोचिए किसी पत्नी के लिए ऐसा सुनना, और वो भी सीता देवी के लिए जिन्होंने एक क्षण भी भगवान श्री राम का स्मरण छोड़ा नहीं था, सदैव उनके स्मरण में थी, उनके लिए ऐसा सुनना कितना कष्टदायक था। और उस समय उन्होंने कहा, भगवान राम से वो कहने लगी कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा थी तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? जब हनुमान आए थे उस समय ही आप बता देते तो मैं प्राण त्याग देती अपने, और अभी भी मैं यही कार्य करने वाली हूं। तो उस समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप अग्नि की वेदी तैयार कीजिए। और ये कथा फिर आगे काफी लंबी है कि किस तरह लक्ष्मण ने अग्नि तैयार की, अग्नि प्रज्वलित हुई, सीता देवी उसमें प्रवेश कर गईं, और फिर सारे देवी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए भगवान को समझाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध एक स्त्री से आसक्त होकर नहीं किया है, वो अनासक्त हैं, उन्होंने केवल धर्म का पालन किया है। तो ये जब चीज़ें हम लोग सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, तो हम लोगों को इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये जो भगवान ज्ञान यहाँ दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान के भक्त बनिए, भगवान की शरण जाइए। एक ही कार्य है जीवन में जो हम लोग अच्छा कर सकते। कई बार लोग कहते हैं कोई बहुत बड़े कार्य कर देता है, कोई अच्छा कार्य करता है, कि इसने जीवन में एक तो अच्छा कार्य किया। कोई भी भौतिक कार्य जीवन का अच्छा कार्य नहीं है, अधोगति है,